ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज व्यवस्था के लिए केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। दिल्ली सरकार ने विद्युत बोर्ड के 18,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार के आवास आवंटन में 4% के आरक्षण की घोषणा की है और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 2 लापता नाबालिग बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज व्यवस्था के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कार्य करने के लिए नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित केंद्र तथा दिल्ली सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
बैठक के दौरान श्री शाह ने जल शक्ति मंत्रालय को सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक SOP बनाने के निर्देश दिए, जिससे उनकी गुणवत्ता, रखरखाव और डिस्चार्ज के मानदंड स्थापित किए जाए। उन्होंने कहा कि यह SOP अन्य सभी राज्यों के साथ भी साझा किए जाए। श्री शाह ने कहा कि राजधानी में यमुना, पीने के पानी और ड्रेनेज को लेकर भी योजना बनाई जाए। श्री शाह ने कहा कि राजधानी में यमुना, पीने के पानी और ड्रेनेज को लेकर जो भी योजना बनाई जाए वह अगले 20 सालों को ध्यान में रखकर बने। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में जल वितरण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि पूरी दिल्ली को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। श्री शाह ने नालों से गाद हटाने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड में खाली पदों को तत्काल भरे जाने के भी निर्देश दिए। श्री शाह ने कहा कि यमुना लोगों के लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक भी है। इसकी स्वच्छता केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वय वंदना स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अस्पताल संरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और विभिन्न योजनाओं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर जोर दिया। बैठक के बारे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करीब 3 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत 1,23,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण किया गया है। दिल्ली में करीबन 100 अस्पताल इन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हैं। आयुष्मान भारत मिशन के तहत दिल्ली सरकार 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित कर रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 ऐसे केंद्र खोले जाएंगे जहां स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक उपचार, आवश्यक दवाइयां और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम संचालित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, किफायती और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भेंट की। इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना नदी की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों प्रारंभिक स्थान से लेकर अंतिम गंतव्य तक यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध हैं।
यमुना सफाई उसके प्रारंभिक स्थान से लेकर के अंतिम गंतव्य तक, ये आदरणीय मोदी जी के विजन का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और जिसके लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार और दिल्ली में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसी पे लगातार काम चल रहा है। बिना प्रदूषण के एक साफ सुथरी अविरल यमुना जी दिल्ली को मिले, इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज दिव्यांगजनों के लिए आधुनिक और बेहतर उपकरणों की जानकारी हेतु कानपुर स्थित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के मुख्यालय में निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में देश में चल रहे सुगम्य भारत अभियान को सफल बनाने में दिल्ली सरकार प्रभावी ढंग से जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि इन नवीनतम सहायक उपकरणों से राजधानी के दिव्यांगजनों को आधुनिक और सुविधाजनक उपकरणों का लाभ मिलेगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज राजधानी के सरस्वती विहार स्थित सर्वोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूल के छात्रों और शिक्षकों से भी बातचीत की। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में स्कूल की स्थिति पर उन्होंने आम आदमी पार्टी की पूर्व दिल्ली सरकार की आलोचना की। श्री सूद ने आरोप लगाया कि 2018 में यहां एक स्विमिंग पूल के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रूपये मंजूर किए गए थे, फिर भी आज वो पूल अधूरा है।
2018 में 2.5 करोड़ से एक स्विमिंग पूल बनने के लिए दिया गया और 2018 से बनने वाला पुल आज तक पूरा नहीं हुआ। मालिक की सरकार भी चली गई, मगर ये अहंकार कि हमने दिल्ली के स्कूल और शिक्षा बदल दी, ये नहीं गया। 2018 में पैसा दिया, 2018 में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ और आज 2025 तक हमें संघर्ष करके उस प्रोजेक्ट को पूरा करवाने का काम करना पड़ रहा है।
दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक आज समिति अध्यक्ष और विधायक अजय महावर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति ने वायु प्रदूषण, राजधानी में शराब बिक्री में पाई गई अनियमितताओं तथा स्वास्थ्य से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा की। समिति ने इन विषयों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों से जानकारी मांगी और आगे की कार्ययोजना पर विचार किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए इको क्लब के छात्रों के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री सिरसा ने बताया कि पर्यावरण विभाग द्वारा समर्थित और ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित ये पहल युवाओं और छात्रों के बीच जलवायु जागरूकता पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के विद्युत बोर्ड के 18,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की महंगाई राहत में 2% वृद्धि की आज घोषणा की। एक रिपोर्ट।
दिल्ली विद्युत बोर्ड के 18,737 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की महंगाई राहत में ये बढ़ोतरी इस वर्ष 1 जनवरी से लागू कर दी गई है, जो अब 53% से बढ़कर 55% हो गई है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार के इस कदम से दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनार्थियों को न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि वे अपने परिवार के खर्चों को वहन करने में भी सक्षम हो सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने ये भी रेखांकित किया कि दिल्ली सरकार न केवल कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के कल्याण की सोच रखती है बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सरकार ने आज दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार के आवास आवंटन में 4% के आरक्षण की घोषणा की है। ये निर्णय सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार के आवासीय आवासों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि उसकी सरकार द्वारा लागू की गई सामाजिक योजनाओं ने देश के गरीब वर्ग के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एक मिसाल कायम की है। श्री सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में देश में लगभग 10 करोड़ 33 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन है।
10.33 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शंस पूरे देश में हैं, जिसमें केवल डेटा जो कि 2022 के डेटा हैं, उसमें कुल 8.99 करोड़ कनेक्शन जो है सस्टेन्ड यूजेज। तो कई बार जो विपक्ष कहती है कि हमने कनेक्शंस दिए लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इस बात का खंडन करता है ये डेटा। लगभग 85% से भी ऊपर जो कनेक्शंस हैं उनको निरंतर उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।
युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के जुलाई में राजधानी में होने वाले रोजगार मेले को लेकर दिल्ली के श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने आज रोजगार निदेशालय के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रोजगार मेले के आयोजन स्थल के चयन, प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या, संस्थानों द्वारा भेजे जाने वाले आमंत्रण, संभावित नियुक्तियों की संख्या और भाग लेने वाले नियुक्ताओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने बताया कि मेले के माध्यम से रोजगार तलाशने वाले युवा और रोजगार देने वाले संस्थान सीधे संपर्क कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जैव विविधता ही धरती की समृद्धि और संतुलन की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि मनुष्य, प्रकृति और प्राणियों का अस्तित्व इसी संतुलन पर निर्भर है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय की जयंती पर आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा राममोहन राय भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे, जिनकी दूरदर्शिता और समतामूलक दृष्टिकोण ने भारत को एक समृद्ध विरासत प्रदान की है। दिल्ली पुलिस की मानव तस्करी निरोधक इकाई की एक टीम ने राजधानी के दो लापता नाबालिग बच्चों को उनके परिवारों से सुरक्षित रूप से मिलवाया है। एक रिपोर्ट।
ऑपरेशन मिलाप के तहत कार्रवाई में पुलिस की टीम ने संबंधित जानकारी मिलने के बाद कई संस्थाओं, पुलिस अधिकारियों और जानकार लोगों से लापता बच्चों की जानकारी और तस्वीरें साझा की। इसके अलावा पुलिस ने बाल संस्थानों, वन स्टॉप सेंटर, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, गुरुद्वारों और मंदिर जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में उनकी तस्वीरें प्रसारित की और तलाशी भी ली। दिल्ली पुलिस ने एक बच्चे को हरियाणा के मोहम्मदपुर नरसिंहपुर गाँव से ढूंढ निकाला, जबकि दूसरी बच्ची को उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बस स्टैंड पर खोज निकाला गया। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल शाम आए तूफान से दो लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि विभाग को घरों के ढहने, पेड़ों और बिजली के खंभों के उखड़ने से संबंधित लगभग 60 कॉल प्राप्त हुई। तेज हवाओं से यातायात, दिल्ली मेट्रो और उड़ानों पर भी असर पड़ा। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह ने बवाना की मुनक नहर में बच्चों के डूबने की घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इस कठिन घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस से पहले आज राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें की शुरुआत की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व का एक वीडियो पोस्ट करते हुए सभी से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सतत जीवन शैली अपनाने, जागरूकता बढ़ाने और सामूहिक रूप से कार्रवाई करने का आग्रह किया। मंत्रालय ने कहा है कि यह अभियान भारत की प्रमुख पहल मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली में आज दोपहर के समय दिनभर धूप खिले रहने के बावजूद हवा चलती रही, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज व्यवस्था के लिए केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। दिल्ली सरकार ने विद्युत बोर्ड के 18,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार के आवास आवंटन में 4% के आरक्षण की घोषणा की है और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत दो लापता नाबालिग बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।